ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग के 5 जिलों में आज 66 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे दौर की लॉटरी अब 31 जुलाई को निकाली जाएगी। राज्य भर में आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोकपर्व हरेली। जगदलपुर में पाठ यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा पर्व। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में हो सकती है भारी से अति भारी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों में आज 2,27,00,000 रुपए से अधिक के इनामी 66 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर जिले में 25 माओवादियों ने बस्तर पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर 1,15,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादियों में ओडिशा में सक्रिय माओवादी नेता रमन्ना, नेशनल पार्क एरिया कमेटी के सदस्य सुक्खू और कमलू समेत बड़े कैडर के माओवादी शामिल हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 5 माओवादियों पर 17,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादियों में एक दंपत्ति भी शामिल है। ये माओवादी करीब 20 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे और इन पर विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। उधर कांकेर जिले में माओवादियों की मिलिट्री कंपनी नंबर 1 के कमांडर सहित 13 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी पर 62,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह सभी माओवादी कांकेर जिले के रावघाट, परतापुर एरिया कमेटी और माल डिवीजन में सक्रिय थे। वहीं नारायणपुर जिले में आज कुल 33,00,000 रुपए के इनामी 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें पीएलजीए बटालियन के प्लाटून 1 और प्लाटून 16 के 5 माओवादी शामिल हैं। हथियार बनाने वाली टीम के कमांडर मुकेश और उसके 2 साथियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर सुकमा जिले में सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी जगरगुंडा और चिंतलनार इलाके में सक्रिय थे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग में पिछले 18 महीनों के दौरान 1500 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
तक बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 18 महीने की बात करेंगे, लगभग 1500 से अधिक माओवादी कैडर अलग अलग जिला में आत्मसमर्पण किया। टॉप लेवल के कैडर्स भी सामने आने लग गई है। एक स्टेट कमिटी लेवल के कैडर जैसे इरपा जगदीश करके और डीवीसीएम विनोद, इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर आज बीजापुर में कुल 25 कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जिला दंतेवाड़ा में 15 कैडर्स, जिला नारायणपुर में 8, जिला सुकमा में 5 और जिला कांकेर में 13, इस प्रकार टोटल 66 माओवादी कैडर आज बस्तर संभाग के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर रहे हैं।
वहीं बीजापुर में आत्मसमर्पण करने वाले एक माओवादी ने कहा कि वह नक्सलियों की विचारधारा से तंग आ चुका था।
घटना में मैं शामिल रहा, जल जंगल की जमीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हो गए। अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था वो हो रहा, देखने से कुछ विकास नहीं है। इसलिए वो झूठी विकास दर को हम समझ चुके हैं कि खोखली विचारधारा है।
आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इन सभी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के अन्य प्रावधानों का भी लाभ दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत छात्रों की सीटों के आवंटन और दूसरे दौर की लॉटरी की तिथि बढ़ा दी है। पहले लॉटरी और सीटों का आवंटन 22 और 23 जुलाई को होना था, अब लॉटरी 31 जुलाई को होगी। वहीं प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का कल समापन हुआ। कृषि वैज्ञानिकों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को संवाद कौशल, संभाषण कौशल और प्रस्तुतिकरण कौशल विकास के साथ ही ग्राफिक डिजाइनिंग, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन निर्माण, वीडियो प्रोडक्शन तकनीक, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसानों ने अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की, साथ ही बच्चों और युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भी हरेली त्योहार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में गौरी गणेश नवग्रह की पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया, साथ ही नांगर रापा कुदाल व अन्य कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना कर हरेली उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री साय ने समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की।
आप सबला हरेली त्योहार के मोर तरफ से गाढ़ा गाढ़ा बधाई। छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा भाई बहनी संगवारी सबला गाढ़ा गाढ़ा हरेली त्योहार के बधाई।
वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने के नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास पर आज सुबह से हरेली की धूम रही। उन्होंने सपरिवार हल और कृषि औजारों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौ माता को आटे की लोंदी और गुड़ खिलाया। हरेली पर्व के मौके पर आज राजधानी रायपुर के सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम के सदस्यों ने राजीव नगर स्थित शिव मंदिर परिसर तथा संसार वाटिका में पौधारोपण किया। उच्च गुणवत्ता के आम, जामुन, आंवला और बेल के पौधे लगाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हरेली पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। हरेली अमावस्या के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने आज पाट यात्रा पूजा विधान के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गया है। बस्तर दशहरा पर्व के इस प्रथम पूजा विधान में बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और बस्तर दशहरा पर्व समिति के पारंपरिक सदस्य मांझी चाल की पुजारी पटेल तथा सेवादारों के साथ ही बड़ी संख्या में जन समुदाय शामिल हुआ। बस्तर दशहरा पर्व के पहले पूजा विधान पाठ यात्रा में रथ निर्माण के लिए बनाए जाने वाले औजार ठुरलू खोटला तथा अन्य औजारों की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर रस्म पूरी की गई। राज्य सरकार के अनुसार चालू खरीफ मौसम में राज्य में खेती किसानी के लिए रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार ने चालू खरीफ मौसम में रासायनिक खाद के निर्धारित लक्ष्य से अभी तक 94% खाद का भंडारण कर लिया है। इसके साथ ही भंडारित खाद में से 70% खाद का वितरण भी किसानों को कर दिया गया है। राज्य में यूरिया, एनपीके, पोटाश, सुपर फास्फेट जैसी रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को उनकी मांग के अनुसार सरकारी समितियों से लगातार मिल रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इसके प्रयोग से किसानों की को प्रति एकड़ की धान की फसल में लगभग 75 रूपये का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। धान की एक एकड़ की फसल के लिए आवश्यक 50 किलोग्राम ठोस डीएपी खाद के स्थान पर केवल 25 किलोग्राम ठोस डीएपी तथा आधा लीटर नैनो डीएपी की एक बोतल पर्याप्त होती है। नैनो डीएपी के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक किया गया है। उन्हें डेमो देकर इसकी विधि भी सिखाई गई है। राज्य सरकार ने नैनो डीएपी के उपयोग को लेकर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। कृषि विभाग के मैदानी अमले, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों की सहायता से खेतों में ठोस डीएपी के साथ नैनो डीएपी के संयुक्त प्रयोग की विधि के बारे में किसानों को जागरूक किया गया है। कोरबा जिले के तानाखार गांव के पास हुई दुर्घटना में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, वहीं अन्य 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि एकलव्य हायर सेकेंडरी स्कूल पोड़ी उपरोड़ा के 6 शिक्षक और 2 विद्यार्थियों का एक समूह एक वाहन में सवार होकर कटघोरा से अपने विद्यालय जा रहा था। कटघोरा नेशनल हाईवे बाईपास से 4 किलोमीटर आगे तानाखार पहुंचने पर उनकी गाड़ी अंबिकापुर की तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान 2 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवर्ती घेरा भी बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके प्रबल निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके असर से कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग के 5 जिलों में आज 66 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे दौर की लॉटरी अब 31 जुलाई को निकाली जाएगी। राज्य भर में आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोकपर्व हरेली। जगदलपुर में पाठ यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा पर्व। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में हो सकती है भारी से अति भारी वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।